पृष्ठ संख्या 54, अध्याय 5, तबले के वर्ण और भाषा। तबले पर अलग अलग उंगलियों से विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न आघात करके जो विविध प्रकार के इकहरे और संयुक्त नाद निर्माण किए जाते हैं, उन्हें तबले के मूल वर्ण कहा जाता है। इन विविध अक्षरों की युति द्वारा शब्दों का निर्माण होता है। शब्दों की यह निर्मिति वादन सुकरता के तत्वों एवं ध्वनि सौंदर्य के सांकेतिक नियमों के अनुसार हुई है। ऐसे दो या तीन शब्दों का एकाध संयुक्त शब्द अथवा शब्द समूह निर्माण किया जाता है और वह प्रचलित हो जाता है। शब्द एवं संयुक्त शब्द जाति आधारित बने होते हैं, किंतु कभी कभी शब्दों की जाति और वे शब्द जिस रचना में प्रयुक्त हों उस रचना की जाति अलग अलग हो सकती है। एकाध रचना का विश्लेषण करने पर हमें यह फर्क स्पष्टतः महसूस होता है कि उक्त रचना की जाति उसके अंगभूत शब्दों से भिन्न होती है। अपने अध्ययन के लिए शब्दों की जाति की जानकारी होना आवश्यक है, किंतु उसका कोई विशेष मतलब नहीं है। रचना की जाति ज्ञात होने से वादक का प्रभाव एवं आत्मविश्वास बढ़ता है। अक्षर शब्दों का वर्गीकरण। अक्षरों और शब्दों का उनकी गूंज युक्त एवं गूंज रहित ध्वनियों के दृष्टिकोण से विचार करने पर ऐसे अक्षर शब्दों का चार समूहों में वर्गीकरण हो सकता है। वे समूह इस प्रकार हैं। पहला स्वरमय अक्षर, धा धिन ता तिन गे घे इत्यादि। स्वरमय शब्द अक्षर समूह धीन गीन धागेन इत्यादि। उपर्युक्त स्वरमय अक्षरों और स्वरमय शब्दों में तबले पर या बाएं पर गूंज युक्त ध्वनियों की अपेक्षा रहती है। तीसरा स्वरमय अंत्यपदी शब्द या सहायक स्वरमय क्रियापद, धीना गीना धागे धीना गीना धाधा धीना इत्यादि। ये शब्द भी स्वरमय हैं, किंतु वे अधिकतः पेशकार और कायदे की रचना के अंत में आते हैं और इन शब्दों से रचना पूरी होती है। यदि यह माना जाए कि पेशकार अथवा कायदा सूत्र रूप में आबद्ध पद्यमय विचार वाक्य है, तो ये शब्द उस वाक्य के क्रियापद के तौर पर काम करते हैं। उदाहरण यदि हमने कायदा धातिट धातिट धाधातिट धातिट धातिट धाधातिट धातिट धातिट इस प्रकार लिख दिया तो हमें लगेगा कि यह कायदा अपूर्ण है, किंतु अंतिम धातिट धातिट के बदले अगर हमने धागे धीना गीना लिखा तो वह रचना यूं लिखी या बजाई जाएगी। पृष्ठ संख्या 55। धातिट धातिट धाधातिट धागे धीना गीना, और हमें यह प्रतीत होगा कि यह रचना पूर्ण है। इन्हीं कारणों से मैंने स्वरमय अंत्यपदी शब्दों को अलग शब्द वर्ग माना है। चौथा व्यंजन अक्षर शब्द अक्षर समूह, तिट तिरकिट तक त्रक की कत धीर धीर इत्यादि। पांचवा व्यंजन प्रधान शब्द धातिट धाधातिट धातिरकिट धात्रक घेनातीट घीड़नग धाति इत्यादि। तबला एक सुरावाद्य है, अतः ध्वनि वैविध्य पैदा करने के लिए तबले पर विभिन्न स्थलों पर अलग अलग उंगलियों से विविध बंद और खुले नाद निर्माण करके नाद वैविध्य पैदा करने का प्रयत्न होता है। अतः ये शब्द सौंदर्यजनक हों यह अपेक्षा रहती है, और ऐसा सौंदर्य स्वरमय एवं व्यंजन शब्दाक्षरों के मिश्रण से अधिक मात्रा में पैदा होता है। इस बात को ध्यान में रखकर संभवतः व्यंजन प्रधान शब्दों की निर्मिति होती गई होगी। तबला वादन के सब प्रकारों में इन चार समूहों में अंतर्भूत शब्दों का स्वतंत्रतया अथवा संयुक्त रूप से विविध जातियों और विविध लयों के माध्यम से उपयोग करके रचनाएं बांधी जाती हैं। रचना निर्मिति। तबला वादन में पेशकार, कायदा, रेला, रव, लग्गी, लड़ी, गत टुकड़े, मुखड़े, मुहरे इत्यादि, चक्रधार, परन, तिहाई इत्यादि अनेक रचना प्रकार प्रस्तुत किए जाते हैं। इन रचनाओं का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करने पर यह बात ध्यान में आ जाएगी कि इन रचनाओं का तो दो स्वतंत्र तत्वों से वर्गीकरण किया जा सकता है। पृष्ठ संख्या 56। वर्गीकरण तत्व एक, खाली भरी का उपयोग। और ऐसी रचनाएं जिनमें खाली भरी तत्व का सुनियोजित रूप में सतत उपयोग किया जाता है। ब, ऐसी रचनाएं जिनमें योजनाबद्धता के साथ हेतुपूर्वक खाली भरी तत्व का उपयोग नहीं किया जाता हो। पंडित रामशंकर पागलदास और समूह की रचनाओं को कायदा संतति और ब समूह की रचनाओं को परण संतति कहते हैं। यहाँ संतति का मतलब है परिवार या समूह। वर्गीकरण तत्व दो, रचना की विस्तारक क्षमता। और ये रचनाएं ऐसे ढांचे में बधी होती हैं कि उनमें सन्निहित आशय एक रूप, एक सूत्र रूप में बद्ध रहता है और इस विचार सूत्र का विकास किया जाता है, विस्तार किया जाता है। विस्तारक क्षमता इस रचना का प्राण होती है। ब, ये ऐसी पूर्ण संकल्पित रचनाएं हैं जिनमें विस्तार करने की आवश्यकता नहीं होती। विस्तार किया भी जाए, किया भी नहीं जाता तथा विस्तार करने की पद्धति भी नहीं होती। खाली भरी के तत्व से बांधी हुई रचनाएं बहुतांश में विस्तारक्षम होती हैं, परंतु में कुछ ऐसी गतें भी बंधी हुई रहती हैं जिनको खाली भरी के तत्वों से प्रस्तुत किया जाता है किंतु उनका विस्तार नहीं किया जाता। विस्तारक्षम रचनाओं के विशेष लक्षण निम्नानुसार हैं। पहला, इन रचनाओं पर ताल या ठेकों के प्रभाव की प्रतीति होती है। दूसरा, इनमें खाली भरी के तत्व का योजनाबद्ध रूप में उपयोग किया जाता है। तीसरा, इन रचनाओं की गठन एवं विस्तार सर्वसाधारणतः एक ही जाति में हुआ करता है, किंतु वैसा होना जरूरी ही है, ऐसी बात नहीं। चौथा, इन रचनाओं का आकार तुलनात्मक दृष्टि से छोटा होता है। पांचवा, यह रचना सम से आरंभ होकर आवर्तन के अंत में आखिरी मात्रा पर पूर्ण होती है, फलतः अगली सम से उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है एवं इस वैशिष्ट्य के कारण इसमें विस्तार करना सुलभ होता है। पेशकार, कायदा, रेला, रव, लग्गी, लड़ी इत्यादि विस्तारक्षम रचनाओं का प्रत्येक प्रकार के बारे में विचार आगे के अध्यायों में स्वतंत्रतः किया गया है। पूर्ण संकल्पित रचनाएं। सुसंवादी काव्यमय भाषा, गणित, गति, लयबद्धता, लयाकृति, जाति आदि में से एक या अनेक तत्वों से प्रभावित होकर प्रतिभावान रचनाकार एकाध निश्चित मात्रा काल वाली रचना निर्माण करता है। पृष्ठ संख्या 57। यह रचना संवर्गों से परिपूर्ण होने से उसके विस्तार की आवश्यकता नहीं होती, रिवाज नहीं होता और अपेक्षा भी नहीं होती। इस रचना में खाली भरी तत्व का महत्व गौण रहता है। ऐसी रचनाएं परन, टुकड़ा, गत, चक्रधार एवं मुखड़ा, मोहरा इत्यादि, इन्हें हम पूर्ण संकल्पित या कल्पना पूर्ण रचनाओं के नाम से संबोधित करेंगे। कोई भी लिखित रचना बंदिश रूप रेखात्मक होती है, उसका एक ढांचा होता है। बंदिश का सौंदर्य लिखित रूप में अत्यल्प मात्रा में प्रतीत होता है, पढ़ंत से वह पर्याप्त मात्रा में महसूस होता है, किंतु बंदिश का सौंदर्य असल में प्रतीत होता है वादक के समर्थ हाथों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ही। पूर्ण संकल्पित बंदिश का आशय और सौंदर्य रचना कार को अभिप्रेत होता है, वैसा ही पेश होने की दृष्टि से वादक प्रयत्नशील रहता है। फलतः उक्त बंदिश पर रचनाकार का प्रभाव 60% से 70% तक होता है और वादक के कौशल का प्रभाव 30% से 40% तक के बीच होता है। इसके विपरीत विस्तारक्षम रचनाओं के प्रस्तुतिकरण में रचनाकार का प्रभाव 20-25% होता है, तो वादक का प्रभाव लगभग 80% तक होता है, क्योंकि रचना विस्तार में वादक की कल्पना, सौंदर्य दृष्टि, घराने का अनुशासन, निकास आदि घटक महत्वपूर्ण होते हैं। फलतः कल्पनापूर्ण रचना की तुलना में विस्तारक्षम रचना का प्रस्तुतिकरण पर्याप्त मात्रा में अधिक व्यक्तिनिष्ठ ही होता है।